वहीं इप्सिता और नंदिनी कार में बैठ गईं। तभी नंदिनी ने इप्सिता के हाथ में एक बॉक्स देखा और वो उसे उसके हाथ से लेते हुए बोली, ये क्या है, तूने अपने लिए कुछ खरीदा है क्या? इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने कुछ नहीं खरीदा, ये तो अभिमन्यु ने। इतना बोलते बोलते इप्सिता रुक गई। तभी नंदिनी उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो, जीजू ने गिफ्ट किया है, मैं भी तो देखूं जरा, लाओ दिखाओ मुझे। इतना बोलकर नंदिनी उस बॉक्स को खोलने लगी। जैसे ही नंदिनी ने बॉक्स खोला, उसने बड़े शौक से कहा, वाह, ये कितना खूबसूरत है। नंदिनी उस डायमंड नेकलेस को देखकर बोली। फिर उसने नेकलेस उदयवीर को दिखाते हुए कहा, देखिए उदय, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। उदय ने बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। इप्सिता चुपचाप बैठी हुई थी और अभिमन्यु से की हुई बातों को सोच रही थी। थोड़ी देर में वे लोग अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही इप्सिता सीधे अपने कमरे में जा रही थी। तभी इप्सिता की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, हो गई तुम तीनों की शॉपिंग? अपनी माँ की बात सुनकर इप्सिता ने कहा, मैं कोई शॉपिंग करने नहीं गई थी मॉम, शॉपिंग करने तो नंदिनी गई थी, उसने काफी सामान खरीद लिया है, हम काफी थक गए हैं इसलिए रेस्ट करने जा रहे हैं, इप्सिता की माँ ने कहा। एक मिनट रुको और यहाँ आओ। इप्सिता अपनी माँ की बात सुनकर उनके पास गई। नंदिनी वहीं पर खड़ी थी। उदय चुपचाप हॉल के सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया। उसने अपने लिए पानी मंगवाया। इप्सिता की माँ के हाथ में पीले रंग का एक भारी सा लोलंगा था। उन्होंने वो लहंगा इप्सिता के हाथ में देते हुए कहा, ये तुम्हारे हल्दी फंक्शन का लहंगा है, इसे जाकर कल तक ट्राई करके मुझे बता देना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ठीक करवा दूंगी। इप्सिता ने लहंगा लेते हुए कहा, ठीक है मम्मी, हम सुबह इसे पहनकर आपको बता देंगे। इतना बोलकर वो जा ही रही थी कि नंदिनी भी उसके पीछे जाने लगी। तभी इप्सिता की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, नंदिनी रुको, क्या तुम अपने हल्दी फंक्शन के लिए कोई ड्रेस लाई हो? नंदिनी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आंटी, मैं कपड़े लाई हूँ, लेकिन येलो कलर का मैं एक भी कपड़ा नहीं लाई। उन्होंने धीरे से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, जानती थी मैं, ये लो, हल्दी के फंक्शन में तुम ये पहनना। उन्होंने एक स्ट्रेट लहंगा दिया जो ज्यादा भारी नहीं था पर दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। वो लहंगा उन्होंने नंदिनी को दे दिया। नंदिनी उस लहंगे की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरे लिए है? इप्सिता की माँ ने नंदिनी की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में दिया है तो तुम्हारा ही होगा। नंदिनी खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच आंटी। पर उन्होंने नंदिनी की बात इग्नोर कर दिया और वो उदय के पास आकर बैठते हुए बोली, उदय, हमें आपसे भी कुछ बात करनी है। एक्चुअली अभी कुछ देर पहले रानीसा का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि सारे फंक्शंस, यानी कि हल्दी से लेकर शादी तक के सारे फंक्शंस रॉयल डेस्टिनेशन होटल में होंगे। उदय ने जैसे ही ये बात सुनी, वो जो अभी तक आराम से बैठा था, वो बिल्कुल ठीक से बैठ गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन मम्मी, हम तो सारी तैयारियां यहीं घर पर कर रहे थे, सब कुछ तो यहीं से होने वाला था, तो फिर अब अचानक से इतना बड़ा चेंज क्यों किया जा रहा है? उदय की बात सुनकर इप्सिता की माँ ने कहा, अब मासा ने जब अचानक से बात बोल दिया तो हम मना तो कर नहीं सकते, और कुछ सोचकर ही उन्होंने कहा होगा। उदय अपनी माँ की ये बात सुनकर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, मम्मी, आप जानती है ना, ये इतना बड़ा चेंज अचानक से होना कितनी बड़ी बात है, सब कुछ हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है, और वैसे भी होटल की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ से भी सब कुछ अच्छे से हो सकता था। उदय की ये बात सुनकर इप्सिता की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, हम आपसे कोई सजेशन नहीं मांग रहे हैं उदय, बस आपको जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। इतना बोलकर वो बाकी बचे हुए कामों को उदय को बताने लगी। उदय के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उनकी बात सुनने लगा। वहीं दूसरी तरफ राजवंशी महल में भी तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। सब कुछ मासा के मन मुताबिक हो रहा था। महल के सारे नौकर इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए थे, सब अपने काम को बड़े ही आराम से कर रहे थे। वहीं मासा अपने मैनेजर के साथ खड़ी थी और शादी की सारी तैयारी के बारे में उसे पूछ रही थी। तभी अभिमन्यु महल के अंदर आया। अभिमन्यु को देखते ही मासा उसे आवाज लगाते हुए बोली, अभिमन्यु, जरा इधर आइए। अभिमन्यु मासा की बात सुनकर उनके पास आकर बोला, क्या बात है मासा? उन्होंने कहा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठिए यहाँ। अभिमन्यु उनकी बात मानकर तुरंत उनके बगल में बैठ गया। मासा अभिमन्यु से काफी सीरियस होकर कुछ बातें करने लगी। वहीं अभिमन्यु के चाचा और चाची वहीं साइड में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि अभिमन्यु मासा से इतना सीरियस होकर कुछ बातें कर रहा है, तो उसे देखकर अभिमन्यु के चाचा पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गए। उन्हें इस तरह गुस्से में कमरे के अंदर आते देखकर अभिमन्यु की चाची भी पीछे पीछे कमरे में आई। उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अभिमन्यु के चाचा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ये दोनों माँ बेटे तो जैसे मेरी किस्मत पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, कैसे कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इनका। अभिमन्यु की चाची अपने पति की ये बात सुनकर उसके बगल में आकर बैठते हुए बोली, अभी भी आप पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहे हैं? अपनी पत्नी की बात सुनकर अभिमन्यु के चाचा उसे घूरते हुए देखने लगे। उन्होंने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे रोकेंगे इस शादी को। अगर एक बार ये शादी हो गई तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, फिर सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचेगा। हमारी हालत तो ऐसी हो जाएगी ना, ना हम घर के बचेंगे और ना ही घाट के। फिर हमें सारी जिंदगी अभिमन्यु के पीछे हाथ बांध कर चलना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते। पहले अपने भाई के पीछे पीछे चले और अब अपने भतीजे के। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अब कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। अभिमन्यु की चाची ये बात सुनकर थोड़ी सीरियस हो गई थी। तभी उन्होंने कहा, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? बड़ा कदम क्या उठाएंगे? मुझे कुछ तो बताइए। वो अपनी पत्नी की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोले, अभी तुम इन सारी चीजों के बारे में मत सोचो। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। इतना बोलकर वो उठकर दरवाजे की तरफ गए। वे दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी अभिमन्यु की चाची ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं रुकिए, हमें बताइए आप क्या करने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा दें जिसके लिए बाद में हमें भी आपके साथ साथ पछताना पड़े। और वैसे भी आपने हमसे कहा था आप जो कुछ भी करेंगे हमें बताकर करेंगे, तो अब इस तरह आप बिना बताए कैसे कुछ भी करने की सोच सकते हैं? आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम आपके प्लान को जाने बिना ही उसे एग्जीक्यूट करने देंगे? आप नहीं जानते, इससे आपकी जान के साथ साथ हमारी जान को भी खतरा होगा। मत भूलिए कि आपकी दो बेटियां भी हैं। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर अभिमन्यु के चाचा तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोले, पागल नहीं है हम, सब कुछ जानते हैं हम, और अपनी जिम्मेदारियां भी, और अपना हक कैसे लेना है ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम जो भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, इसलिए तुम मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो। वो इतना बोलकर वहां से जा ही रहे थे कि तभी अभिमन्यु की चाची ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस कमरे के अंदर लाकर सोफे पर बैठाते हुए कहा, यहाँ बैठिए और हमें सब कुछ बताइए। हम आपकी अर्धांगिनी हैं और हमारा हक बनता है कि आप हमें सब कुछ बताएं। अभिमन्यु के चाचा अपनी पत्नी की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है, तुम्हें सब कुछ जानना है ना, तो फिर सुनो। वो अपनी पत्नी को धीरे धीरे करके सारी बातें बताने लगे। कमरे का दरवाजा खुला था, इस बात पर उन दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो अपनी पूरी बात कह चुके, अभिमन्यु की चाची ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या सच में आप ऐसा करने वाले हैं? ऐसा करना सही रहेगा?
अभिमन्यु के चाचा ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, अब ये सही हो या ना हो मैं यही करूंगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। कुछ ही दिनों में ये सारे फंक्शंस खत्म हो जाएंगे और फिर शादी का दिन आ जाएगा। मैं अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकता। तुमने मुझसे पूछा तो मैंने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया है, लेकिन खबरदार, ये बात हम दोनों के अलावा अगर किसी को भी पता चली तो। वो अपनी पत्नी को ये बात समझा ही रहे थे कि तभी दरवाजे के पास कुछ गिरने की आवाज आई। उन दोनों की ही नजर दरवाजे की तरफ गई। उन्होंने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए था, पता नहीं किसने हमारी बातें सुन ली। वो अपनी पत्नी को डांट ही रहे थे कि तभी वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई और उन्होंने दरवाजे के बाहर जाते हुए कहा, कोई नहीं है यहाँ पर, शायद ये हवा से गिर गया है, आप परेशान मत होइए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इतना बोलकर वो वापस अपने कमरे में आ गई। वहीं अगले दिन ही इप्सिता को पता चला कि उनकी शादी के सारे फंक्शंस उनके घर से नहीं बल्कि किसी होटल में होने वाले हैं। वो इस बात को सोचकर थोड़ी सी अपसेट हो गई। इप्सिता को इस तरह अपसेट होते देखकर नंदिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो रही हो? इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहा, वो एक्चुअली क्या है ना, हमने सोचा था कि हमारी डोली इसी घर से उठेगी, हम यही सोचकर थोड़े खुश थे, लेकिन अब अचानक से इतना बड़ा चेंज आया कि हम। नंदिनी इप्सिता की बात सुन रही थी, उसने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। उसने इप्सिता को साइड हक करते हुए कहा, छोटी छोटी सी बातों पर तू इतना ज्यादा सोचने लग जाती है, वैसे भी डोली कहीं से भी उठे, अच्छी बात तो ये है कि तुझे पति इतने अच्छे मिल रहे हैं, अगर कुंवर सा जैसे पति मिले तो फिर बाकी सारी चीजों से क्या ही फर्क पड़ता है। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर अपने मन में सोचती है, एक तरह से देखा जाए तो नंदिनी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। इतना सोचकर इप्सिता अभिमन्यु के बारे में ही सोचने लगी। तभी नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तो मेरे साथ कमरे में चल रही है या नहीं? अब होटल जाने के लिए हमें अपने सारे सामान को वापस पैक करना होगा। जब इप्सिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया, फिर वो नंदिनी के साथ सीधे कमरे में चली गई। क्रमशः